सिंघानिया मेंशन में एक अलग ही तरह का बवाल मचा हुआ था, क्योंकि इस वक्त राजवीर और सम्राट की हालत काफी सुधर चुकी थी, लेकिन ये बात अबीर और अविनाश को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। वो अच्छी तरह से जानते थे कि राजवीर और सम्राट का इलाज इस वक्त तहखाने में किया जा रहा है, लेकिन उन्हें ये बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी कि जिन्होंने उनकी जिंदगी बर्बाद की उनका इस तरह से इलाज किया जा रहा हो। वो तो बस जल्द से जल्द उन्हें सजा में तड़पते हुए देखना चाहते थे, और इसीलिए जैसे ही उन्हें पता चला कि राजवीर और सम्राट दोनों की हालत अब पूरी तरह से स्थिर है, तो बिना देर किए अबीर और अविनाश सीधे तहखाने में जा पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने सीधा सामना किया। और डॉक्टर के मना करने के बावजूद अबीर अविनाश उन्हें उसी हालत में सिंघानिया मेंशन के हॉल में ले आए थे। फिलहाल तभी अबीर सिंह राठौर खुद को रोक नहीं पाया और सीधा बर्फ वाला पानी लाकर राजवीर के ऊपर डाल देता है, और राजवीर तुरंत ही होश में आ जाता है। तब अबीर सिंह राठौर ने राजवीर को कसकर पकड़ा हुआ था और साथ ही दूसरे हाथ से सम्राट को थाम रखा था और बोला था, वक्त आ चुका है तुम लोगों के किए का हिसाब करने का। तभी नानी माँ ने अबीर और अविनाश को रोकते हुए कहा था कि हमें दामाद जी के आने का इंतजार करना चाहिए, इस तरह से सजा देने में हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अबीर ने गुस्से में कहा, नहीं, अब वक्त आ चुका है, मैं इन लोगों को ज्यादा देर तक जिंदा नहीं देख सकता। जब तक ये जिंदा रहेंगे मेरे परिवार पर खतरा बरकरार रहेगा, और जिस दिन इनकी जान चली जाएगी उसी दिन मेरे परिवार का खतरा पूरी तरह से खत्म होगा। अबीर और अविनाश दोनों ही गुस्से में थे। तभी अचानक राजवीर, जो कि होश में तो आ चुका था लेकिन अभी भी काफी ज्यादा कमजोर महसूस कर रहा था, जैसे ही उसने अपने सामने प्रियंका को देखा उसके चेहरे पर एक बार फिर से हल्की सी मुस्कान आ गई थी। ये देखकर प्रियंका ने तुरंत ही अपना मुंह मोड़ लिया था, लेकिन अबीर सिंह राठौर ये देखकर पूरी तरह से गुस्से से भर उठा और मन ही मन सोचने लगा कि कितना घटिया इंसान है ये, मौत के मुंह पर खड़ा है लेकिन फिर भी इसके चेहरे से मक्कारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब अबीर का गुस्सा अपने हद पर पहुंच चुका था, वहीं अविनाश भी खुद को रोक नहीं पा रहा था और उसने सोचा कि अब इन्हें हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि जब तक ये जिंदा रहेगा उनके परिवार पर खतरा बना रहेगा। लेकिन इससे पहले कि अविनाश या अबीर उसकी जान ले पाता, तभी अरमान और बाकी सब लोग वहां पहुंच चुके थे। अरमान ने तुरंत आगे बढ़कर अबीर को रोक दिया और कहा, अभी इसके जाने का वक्त नहीं आया है। ये सुनकर अबीर को और ज्यादा गुस्सा आ गया और वो बोला, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम इसे जिंदा क्यों रखना चाहते हो, इसकी जान क्यों नहीं ले लेते, क्यों इसे बचाना चाहते हो। तब अरमान ने एक गहरी सांस ली और शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, ठीक है, मैं समझ चुका हूँ कि मेरा परिवार इसे जिंदा नहीं देखना चाहता, तो ठीक है, मैं अपने परिवार की इच्छा जरूर पूरी करूंगा। ये बोलकर सभी लोग एक साथ अबीर के पीछे पीछे आगे बढ़ने लगे थे, वहीं आस्था के साथ साथ बाकी सभी लड़कियां भी उनके साथ चल पड़ी थीं। तभी जैसे ही वो सब लोग बाहर निकले तो माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। वहां का वातावरण पहले से कहीं ज्यादा भारी और तनावपूर्ण हो गया था, क्योंकि जिनकी भावनाओं के साथ इसने खेल खेला था अब वही लोग उसके सामने खड़े थे जिनकी जिंदगी इसने बर्बाद की थी। नैना माथुर से थप्पड़ का बदला लेने के लिए उस पर झूठे इल्जाम लगवाए, उससे मर्डर करवाए और उन्हें पूरी तरह से बदनाम कर दिया था। इन्हें सजा सिर्फ और सिर्फ वही लोग देंगे जिनकी जिंदगी इन्होंने बर्बाद की है, क्योंकि सामने आश्रम के लोग खड़े थे, वही लोग जो नैना माथुर के अपने थे। आज सभी एक साथ वहां मौजूद थे लेकिन उनकी आंखों में साफ साफ नफरत झलक रही थी राजवीर और सम्राट के लिए। अरमान पहले ही समझ चुका था कि उसकी गैरहाजिरी में अविनाश और अबीर कुछ ऐसा ही कदम उठाएंगे, इसलिए उसने पहले ही अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम के सभी लोगों को राजवीर की असली सच्चाई बता दी थी। अब जब सच्चाई उनके सामने थी तो हर एक चेहरा शर्म से झुका हुआ था। उन्हें खुद पर गहरा अफसोस हो रहा था कि कैसे वे राजवीर के झूठे बहकावे में आ गए, कैसे उन्होंने अपनी ही भगवान जैसी नैना को गलत समझ लिया और कैसे उसी राजवीर के साथ उन्हें भेज दिया जिसने उनके भरोसे के साथ सबसे बड़ा धोखा किया। हर किसी के दिल में अब सिर्फ पछतावा था और साथ ही एक जलती हुई आग, गुस्से और नफरत की आग, और उसी आग को अपने सीने में लिए वो सभी लोग आज वहां खड़े थे हजारों की भीड़ में, जहां अब सिर्फ एक ही भावना बाकी थी, इंसाफ। अब बिना देर किए राजवीर और सम्राट को उनके सामने फेंक दिया गया था। सभी लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर बिना एक पल गवाए भीड़ राजवीर पर ऐसे टूट पड़ी जैसे भूखे भेड़िए अपने शिकार पर टूट पड़ते हैं। भीड़ के हाथों राजवीर के शरीर का जो भी हिस्सा सामने आ रहा था वे उसे बेरहमी से मारना शुरू कर चुके थे। राजवीर रो रोकर चिल्ला रहा था, अरमान तुम चाहो तो मुझे खत्म कर दो लेकिन मुझे इन लोगों के हवाले मत करो। लेकिन अरमान का चेहरा पूरी तरह सख्त और डरावना था, उसने एक बार भी राजवीर की ओर नहीं देखा। उसने आस्था का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे अपने करीब कर लिया था। वहीं आस्था भी भरी आंखों से ये सारा दृश्य देख रही थी। आखिरकार जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी आज वाकई उसका इंसाफ हो रहा था।
पूरी भीड़ ने मिलकर सम्राट और राजवीर को बेरहमी से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया था। इतना ही नहीं, उनके प्राण निकल जाने के बाद भी कुछ देर तक लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। तभी सभी लोग हाथ जोड़कर आस्था और अरमान के सामने खड़े हो गए थे। वहीं वे महिलाएं जो शुरू से ही अनाथ आश्रम चलाती थीं और नैना को अपनी बेटी मानती थीं, उनकी आंखों में आंसू थे। आस्था का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने कहा था, बेटी, पूरे आश्रम में हर जगह नैना के लिए लोगों के दिलों में नफरत भर गई थी, लेकिन तुमने उसका नाम साफ कर दिया, उसकी सच्चाई सबके सामने लाकर उसकी आत्मा को सुकून दे दिया। हम तुम्हारे बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। अब अरमान और आस्था के इंसाफ को देखकर उनका पूरा परिवार उन्हें प्राउड नजरों से देख रहा था। सभी की आंखों में नमी के साथ साथ ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार था। तभी प्रियंका ने आगे बढ़कर सभी लोगों की ओर देखते हुए कहा था, मैं जानती हूँ कि मैं आप लोगों की नैना माथुर नहीं हूँ, लेकिन मैं ये वादा जरूर करती हूँ कि जब भी मुझे मौका मिलेगा, मैं आपकी सेवा करने के लिए अनाथ आश्रम में जरूर आऊंगी। जैसे ही प्रियंका ने ये कहा, उसका चेहरा भावनाओं से भर गया था। आश्रम की महिलाओं ने तुरंत उसके सिर पर हाथ रख दिया, उसे गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। वहीं सीमा जी और मनोज जी अपनी बेटी को गर्व भरी नजरों से देख रहे थे। आज पहली बार उनकी बेटी ने इतना बड़ा और सच्चा फैसला लिया था। प्रियंका ने मन ही मन ये निर्णय लिया था कि वो अपनी आगे की जिंदगी अब सेवा और मानवता के नाम कर देगी और पूरी तरह से इन लोगों के साथ जुड़कर उनकी मदद करेगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर वाले ने उसे ये नई पहचान, ये नया चेहरा किसी खास मकसद के लिए ही दिया हो, ताकि वो दूसरों के लिए कुछ कर सके। कहीं ना कहीं प्रियंका का ये बदलाव और उसका ये योगदान देखकर सभी के चेहरों पर एक प्यारी सी सुकून भरी मुस्कान आ गई। लेकिन तभी अचानक अबीर प्रियंका के पास गया और उसे देखते हुए बोला था, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जैसे ही अबीर ने सबके सामने प्रियंका को प्रपोज किया, प्रियंका हैरानी और शर्म से एकदम सुन्नसी रह गई और उसने तुरंत जाकर सीधे आस्था को गले से लगा लिया था। बाकी सब अचानक अबीर के इस फैसले से पूरी तरह हैरान थे, लेकिन कहीं ना कहीं सभी को प्रियंका के लिए ये डिसीजन बिल्कुल ठीक लग रहा था। वहीं नानी माँ की तो आंखें भर आई थीं। फिलहाल
वहीं आस्था हैरानी से अबीर को देखने लगी थी और अबीर की आंखों में साफ साफ सच्चा जुनून और प्यार दिखाई दे रहा था। तब आस्था अबीर के सामने गई और बोली थी, मिस्टर राठौर, क्या आप इस बात को लेकर पूरी तरह से सीरियस हैं? आप प्रियंका दीदी से किसी तरह का कोई तरस खाकर तो शादी नहीं कर रहे हैं? लेकिन अगर आप प्रियंका दीदी पर तरस खाकर शादी कर रहे हैं तो मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। जैसे ही आस्था ने ये कहा, अबीर हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला था, तरस मैं खाऊंगा, और अगर प्रियंका मुझ पर तरस खाकर शादी कर लेती है तो ये मेरे लिए खुशनसीबी होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि हम दोनों के दिल पर गहरे जख्म लगे हैं, और जब हम दोनों ही एक दूसरे के लिए मरहम बन जाएंगे तो फिर कभी भी हमारे दिल पर कोई नया जख्म नहीं लग पाएगा। जैसे ही अबीर ने ये बात शायराना अंदाज में कही, कहीं ना कहीं आस्था भी भावनाओं से भर गई थी। वहीं अरमान ने बिना कुछ सोचे समझे प्रियंका का हाथ पकड़कर उसे सीधे अबीर के हाथों में थमा दिया था। अब तो किसी के कुछ भी कहने सुनने की कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी। अरमान का फैसला ही सर्वोपरि था। राजवीर और सम्राट का पूरी तरह से अंत हो चुका था और तभी आस्था हंसते हुए बोली थी, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, अब दो दो शादी एक साथ होगी, कितना मजा आएगा। जैसे ही आस्था ने ये कहा, सभी लोग हल्का सा मुस्कुरा दिए थे और फिर सभी सीधे एक बार फिर से मेंशन के अंदर पहुंच गए, जहां पहले से ही सारी शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। मेंशन के गार्डन में ही दो खूबसूरत मंडप सजा दिए गए थे और सभी ने बढ़ चढ़कर इन शादियों में हिस्सा लिया था और बहुत अच्छे से सब तैयार हुए। अपनी अपनी बीवियों को पूरे श्रृंगार में देखकर सभी काफी खुश थे और बच्चे माहौल की रौनक बढ़ा रहे थे। फिलहाल अब जल्दी ही सबसे पहले वसुंधरा जी और अभिमान जी की जोर शोर से एक बार फिर से शादी करवाई गई थी। फिर जल्दी ही उसी मंडप में प्रियंका और अबीर सिंह राठौर की भी शादी करवाई गई थी। कहीं ना कहीं मनोज जी और सीमा जी की आंखें भर आई थी। उन्हें लग रहा था कि उनकी बेटी की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी और उसकी जिंदगी में वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा था, लेकिन इस शादी के बाद उन्हें एक नई उम्मीद नजर आने लगी थी। सभी के चेहरों पर एक बड़ी सी मुस्कान थी, क्योंकि एक गहरे अंधेरे के बाद अब एक खूबसूरत सुबह आ चुकी थी। फिलहाल देर न करते हुए आवान वीर के पास गया और बोला, एक बात बताओ वीर, तुम्हें जरा सा भी जलन तो नहीं हो रही ना? क्योंकि सभी की जिंदगी में उनके पार्टनर आ चुके हैं, लेकिन तुम अभी भी कुंवारे बैठे हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी जिंदगी में भी अपनी कॉलेज की किसी लड़की को ला सकता हूँ, जैसे नाम ही रोजी, नेहा, चांदनी, टीना, इतनी सारी लड़कियां हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, जो मेरी दोस्त रह चुकी हैं, उनसे तुम्हारी बात करवा सकता हूँ। तुम चाहो तो नंबर भी ले सकते हो उनका, चैटिंग डेटिंग करने के लिए। जैसे ही आहान ने ये कहा, रौनक गुस्से में उसे देखने लगी और बोली, क्या कहा तुमने? तुम्हारी कॉलेज की लड़कियां? क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी? अब रौनक की तेज आवाज सुनकर आहान के दांत आपस में किटकिटाने लगे थे और तभी ध्रुव हंसता हुआ बोला, तू चला तो था वीर का घर बसाने, पर अब लगता है तेरा ही घर उजड़ने पर आ गया। अब ध्रुव की बात सुनकर आहान जल्दी से बोला, तुझे तो मैं बाद में देखूंगा। और फिर उसने रौनक को जल्दी से सफाई देने की कोशिश की, लेकिन बात उसके ऊपर ही भारी पड़ गई थी। रौनक ने पास पड़ा हुआ डंडा उठा लिया और उसके पीछे मारने के लिए दौड़ पड़ी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने किसी लड़की का जिक्र अपने मुंह से किया? अब तो आहान पूरी तरह से मंडप के चारों तरफ भागने लगा था और सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े थे। तभी सुमित ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वीर, अगर वाकई तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो तुम हमें बता सकते हो, हम तुम्हारी शादी भी आज के आज इसी मंडप में कर देंगे। अब ये सुनकर एक पल के लिए वीर शर्मा गया और अगले ही पल थोड़ी तेज आवाज में बोला था, आस्था भाभी जिस भी लड़की को मेरे लिए पसंद करेगी, मैं सिर्फ और सिर्फ उसी से शादी करूंगा, क्योंकि आस्था भाभी की वजह से ही मुझे ये जिंदगी मिली है। जैसे ही वीर ने ये कहा, सभी लोग मुस्कुरा दिए। माहौल में खुशी साफ छलक रही थी। तभी सुमित बोला, तुम सही कह रहे हो, एंजल की तरह आस्था ने हमारी जिंदगी बदल दी है। आकाश भी आगे बढ़ा और उनके साथ मिलकर बोला, हाँ, आज हम सब मिलकर तुम्हें धन्यवाद देना चाहते हैं। सच में तुमने हमारी नहीं, अरमान और हम सब की जिंदगी पूरी तरह बदल दी है। तुमने हमें जिंदगी में प्यार का मतलब सिखाया है और ये सब सिर्फ तुमसे सीखा है। तभी रश्मि, रौनक, वंशिका और राधिका एक साथ आस्था के पास आए, उनका हाथ थामा और बोले, सच में आस्था, तुम हमारी जिंदगी का वो अहम हिस्सा हो जिसने हमें जीने की एक वजह दी है। सब लोग बारी बारी से अपने दिल की बात कहने लगे। माहौल पूरी तरह भावनाओं से भर गया था। तभी दादाजी भी आगे आए और बोले, बेटा, तुमने हमारी जिंदगी में खुशियां भर दी हैं। भगवान से यही दुआ है कि तुम्हें हमारी भी उम्र लग जाए और तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई दुख ना आए। ये सुनकर आस्था पूरी तरह भावुक हो गई। उनकी आंखों में नमी आ गई थी, लेकिन चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान भी थी। सभी का इतना प्यार देखकर उनका दिल भर आया। तभी अभिमान और वसुंधरा ने भी आगे बढ़कर उसे ढेरों आशीर्वाद दिया। माहौल में चारों तरफ खुशी और अपनापन था। मनोज जी और सीमा जी, जो एक साथ खड़े सब कुछ देख रहे थे, आज पहली बार सुकून महसूस कर रहे थे। उनकी जिंदगी के सारे दर्द जैसे आज खत्म हो गए हों। नानी माँ की आंखों में आस्था के लिए गर्व साफ दिखाई दे रहा था। वहीं जब सब लोग एक एक करके आस्था की तारीफ कर रहे थे, तभी आहान, जो अब चुप रहने वालों में नहीं था, आगे आया और अरमान की तरफ देख कर बोला, अरे भैया, ये क्या बात हुई? आज सब लोग आस्था भाभी की इतनी तारीफ कर रहे हैं और आप खड़े खड़े बस मुस्कुरा रहे हैं। कम से कम आप भी तो दो शब्द बोलो ना, ये तो गलत बात है। आपको भी हमारी भाभी की तारीफ करनी चाहिए। आहान की बात सुनकर माहौल हल्का सा मजेदार हो गया। सभी ने अरमान की तरफ देखा। अरमान ने डेविल एक्सप्रेशन के साथ आवान को देखा, जैसे कहना चाह रहा हो, अब तेरी खैर नहीं। और आवान तुरंत समझ गया। वो हड़बड़ाकर पीछे मुड़ा और दौड़कर ध्रुव के पीछे छुप गया। ध्रुव मुस्कुराते हुए बोला, लगता है आज तो अरमान भैया तुझे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आवान घबरा कर बोला, मुझे भी लगता है आज मैं फंस गया हूँ। और तभी अचानक अरमान पूरे जोश के साथ आगे बढ़ा। वो आस्था के पास गया और अचानक उसने सबके सामने आस्था को गोद में उठा लिया। वो उसे गोल गोल घुमाने लगा और पूरी ताकत और शिद्दत के साथ जोर से चिल्लाया, आई लव यू मिसेज आस्था अरमान सिंघानिया, आई लव यू। जैसे ही अरमान ने पूरे जोश के साथ ये कहा, सभी लोग खुशी से झूम उठे थे और तालियों की गूंज पूरे माहौल में फैल गई थी और सभी एक साथ मिलकर नारा लगाने लगे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। समाप्त। तो दोस्तों, इसी के साथ इस प्रेम कहानी का खूबसूरत अंत होता है। जिसने भी इस कहानी को इतना प्यार और समर्थन दिया, उसके लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और अपना सपोर्ट बनाए रखें, और अगर कुछ कमी रह गई हो तो काइंडली इग्नोर कीजिएगा। और प्लीज़ मेरी बाकी की स्टोरी को भी ढेर सारा प्यार दें, और बहुत जल्द मेरी न्यू स्टोरी आने वाली है। मुझे पूरी उम्मीद है आप सब लोग उसे भी ढेर सारा प्यार देंगे। एक बार और आप सभी का दिल से शुक्रिया।